Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Najayate mriyate va vipaschit nayam kutaschinnavabhuva kaschit अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मतत्व न पैदा होता है न मरता है, वह नित्य अज शाश्वत पुराण है। आत्मा की अमृत रूपता आचार्य यम इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी अनुभूति आकार की है, हमारी इंद्रियां बाह्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं, और जहां तक बाह्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं वहां तक सब जन्य पदार्थ हैं। जन्य पदार्थों की अनुभूति है, और आत्मतत्व अतीन्द्रिय और अजन्य है। वो व्यापक हैं, वो निष्क्रिय हैं। आगे श्रुति कहेगी अणोरनियान महतो महियान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। आचार्य यम ने नजायते कहकर आत्मा में जनिक क्रिया का अभाव बताया। जो उत्पत्ति रूप जो क्रिया है उस क्रिया का आधार आत्मा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति रूप क्रिया का जो आधार वस्तु होती है उसी वस्तु की उत्पत्ति बोलते हैं हम, और आत्मतत्व उस क्रिया का आधार नहीं है। जिस वस्तु में क्रिया होती है वो वस्तु क्रिया का आधार बन जाती है। ये सबसे विशेष बात है। जो वस्तु परिच्छिन्न होती हैं वो क्रिया का आधार होती हैं, और जिस वस्तु में क्रिया होती है उसमें विक्रिया पैदा होती है। ये हमारे सामान्य पदार्थों का नियम है, और हमारे जीवन में हर समय इसका अनुभव होता है। जो वस्तु परिच्छिन्न है वो वस्तु क्रिया का आधार है, और जिसमें क्रिया होती है उसमें परिवर्तन है। वस्तु परिच्छिन्न है इसीलिए उसमें आवागमन की क्रिया है। बिना क्रिया वस्तु का सरकना, वस्तु का परिवर्तन, वस्तु का विकास संभव नहीं है। बिना क्रिया आप एक इंच भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैं आपसे कितना भी आग्रह करूं कि आप हिले नहीं और थोड़ा आगे बढ़े, आप कितना भी कोशिश करें, कोशिश का ही मतलब क्रिया है। आप बिना क्रिया एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। इसलिए वस्तु को अपनी जगह से सरकने के लिए अथवा अपनी जगह पर रहते हुए भी विकृत होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण में हमारे पास दूध है, तो उस दूध को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो भी उस दूध में क्रिया का होना बहुत जरूरी है, और जहां पर है वहीं विकृत होकर दही बनने के लिए भी उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा शरीर है, एक जगह पर है, दूसरे जगह पर ले जाना है, उसमें क्रिया बहुत जरूरी है। और जहां पर है वहीं से उसको परिणाम को प्राप्त कर, विकार को प्राप्त कर, अन्य अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए भी उसका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ये शरीर में यदि क्रिया ना हो, ये शरीर क्रिया का आधार यदि न बने, तो ये शरीर बूढ़ा कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि दुनिया की सारी चीजें क्रियाजन्य हैं, दुनिया की सारी चीजें कर्मजन्य हैं। एक बीज है और उस बीज में यदि क्रिया ना हो तो कभी अंकुर नहीं बनेगा, उस अंकुर में क्रिया ना हो तो कभी वो पौधा नहीं बनेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं। और उसकी जो मिटने की प्रक्रिया है, बढ़ने की प्रक्रिया है, वो भी थम जाएगी। इसलिए उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो अनेक अवस्थाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारी चीजें क्रियाजन्य हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी बोला है कि ये सारा जगत जो है ये कर्म पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है। क्रिया वस्तु को बनाती है और क्रिया वस्तु को बिगाड़ती भी है। अब इस क्रिया को पुरुषार्थ भी तो कह सकते हैं, ये क्रिया हमारा पुरुषार्थ भी है। इसलिए भगवान ने गीता जी में बार बार बोला, करो 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 करो, बिना किए संसार की उपलब्धि और बिना किए आत्मोपलब्धि भी संभव नहीं। वस्तुतः आत्मोपलब्धि कुछ नहीं करने का नाम है, आत्मोपलब्धि नैष्कर्म है। आत्मोपलब्धि में क्रिया का अभाव है, लेकिन नैष्कर्म में प्रवेश करने के लिए भी कर्म की जरूरत पड़ती है। नैष्कर्म को समझने के लिए भी क्रिया की जरूरत पड़ती है। हमें उन्हें समझना है, उस तत्व को समझना है, और समझने की जो उपकरण साधन है, साधन के बिना, उपकरण के बिना, और एक तीसरी चीज इसमें समझ लेना चाहिए, वस्तु सक्रिय हुए बिना वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकती है, या वो स्वयं भी किसी रूप में पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए क्रिया का आधार हो, और दूसरा उसको सक्रिय होने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, कुछ निमित्त चाहिए। बिना निमित्त कोई सक्रिय भी कैसे होगा, कोई ना कोई निमित्त चाहिए उसको सक्रिय करने के लिए, और उस वस्तु का परिचिन्न होना भी बहुत जरूरी है। वस्तु को परिचिन्न होना भी जरूरी है। यदि वस्तु परिचिन्न ना हो तो वो क्रिया का आधार नहीं बन सकती है। मैंने एक दिन आपको उदाहरण बताया था, आदमी जितना मोटा होता जाता है उतना अपनी सक्रियता कम करता जाता है, और जितना आदमी दुबला पतला होता है उतना ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा, एक दुबला पतला आदमी दौड़े और एक मोटा आदमी दौड़े, कौन ज्यादा दौड़ेगा? जो दुबला पतला है वो तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, उसमें भार नहीं है, बोझ नहीं है, उसमें प्रतिबंध कम होंगे, दौड़ने के प्रतिबंध कम होंगे, और जितना बड़ा आदमी होगा। इसलिए वस्तु को सक्रिय होने के लिए उसमें परिच्छिन्नता होना बहुत जरूरी, उसकी एक सीमा होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप कुल्ला करते हैं, ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। आपको कुल्ला करना है, छोटे छोटे बच्चे कुल्ला करते हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे को बोलना कुल्ला करो, वो पूरा मुख भर के पानी ले लेता, मुख भर के, और उसको उसकी मां बोलती है आप उस पानी को अंदर घुमाओ, चलाओ, अंदर पानी चलेगा मुख में तो अन्न के कण चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चा पानी नहीं घुमा पाता है क्योंकि वो पानी पूरा मुख भर के ले लेता है। उस पानी को घूमने के लिए जगह नहीं है अंदर, तो बच्चा क्या करता है, पूरा मुख घुमा लेता है वो पूरा मुख घुमा लेता है। तो आपको पानी कम लेना पड़ेगा, कुल्ला करना है तो पानी आपको कम लेना पड़ेगा, जगह ही नहीं पड़ेगी उसको घूमने के लिए, जगह ही नहीं पड़ेगी। ये तो वस्तु का परिछिन्नपना है। इसलिए आत्मा में क्रिया क्यों नहीं है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। श्रुति कहती कि आत्मा आकाश की तरह सर्वगत है। आपने कभी आकाश को इधर से उधर होते हुए नहीं देखा होगा, कभी तो आपने पृथ्वी को देखा होगा, देखते हैं जल को आप देखते हैं, वायु को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, चारों भूत इधर से उधर होते हुए हमें दिखाई देते हैं, हमारे अनुभूति के विषय हैं। लेकिन आकाश तत्व इधर से उधर नहीं होता है, वो व्यापक तत्व है। इसलिए आत्मा को समझने के लिए श्रुति ने आकाश तत्व का उदाहरण दिया। आकाश व्यापक होने से माने परिच्छिन्न न होने से उसमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया का आधार नहीं है वो, और क्रिया का आधार नहीं इसलिए उसमें विक्रिया नहीं है। उसमें विक्रिया न होने के कारण वो जन्म नहीं है, जन्म का आधार वो वही वस्तु बनती है जिसमें क्रिया हो, और उसमें यदि कोई क्रिया ही ना हो तो उसमें जन्म नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं, उसमें विकार नहीं। जो आपको मैंने चार प्रकार के विकार बताए थे वो उसके अंदर नहीं है। इसलिए यहां पर आचार्य यम कहते हैं कि आत्म तत्व न जायते व्यापकत्वात् अक्रियत्वात्। वो व्यापक हैं, वो अक्रिय हैं, इसलिए उसमें कोई क्रिया नहीं, और क्रिया न होने के कारण न जायते। वस्तु को उत्पन्न होने के लिए कोई क्रिया होना चाहिए, उसमें क्रिया का आधार होना चाहिए, और जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु कालिक होती है, वो वस्तु देशिक होती है। आप इस चीज को समझे। हमारे यहां पर तीन चीजें हैं वेदांत में, वस्तु परिच्छेद, ये वेदांत के टेक्निकल शब्द हैं। दुनिया की किसी भी आप चीज को देखेंगे उसमें वस्तु परिच्छेद है, उसमें देश परिच्छेद, उसमें काल परिच्छेद। इसी को हम कह सकते हैं कालाक्रांत, देशाक्रांत और वस्तु सावयव है। हम अपने शरीर को ही देख लें, ये वस्तु परिच्छेद से युक्त है। वस्तु परिच्छेद का अर्थ होता है उस वस्तु के अंदर विभाजन है, वस्तु अखंड नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर अखंड नहीं है, ये अनेक वस्तुओं का समूह है। इसलिए आप उसका विभाजन कर सकते हैं, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये नाक है, ये कान है, ये दांत हैं, ये मुख हैं, ये बाल हैं, अनेकों इकाइयों का एक समूह है। इसलिए इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। आप इस वस्तु को टुकड़ों में भी समझ सकते हैं और टुकड़ों में कर भी सकते हैं, इसको अलग अलग कर भी सकते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि आत्म तत्व में वस्तु परिच्छेद नहीं है। आपने अक्सर बहुत जगह पर सुना होगा है, आत्म तत्व में वस्तु परिच्छेद नहीं है। वस्तु परिच्छेद नहीं माने उसके आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, वो अखंड एक रस, वो तत्व जो अखंड एक रस है उसके अंदर अवयवों का भेद नहीं। और दुनिया की सारी चीजें ये वस्तु परिच्छेद से युक्त हैं। और दूसरा परिच्छेद है देश परिच्छेद। जो वस्तु आपके दृष्टि का विषय है, एक सीमा में आबद्ध है, परिच्छिन्न है, वो वस्तु किसी देश में होती है, किसी देश में नहीं होती है। एक समय में आप एक देश में रह सकते हैं, आप घर में नहीं हैं, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अभी घर में नहीं हैं, आपके घर में अभी नहीं गया हूं, और उसके बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अभी घर में नहीं हैं, क्योंकि आप यहां हैं। यदि आप यहां हैं तो घर में नहीं हैं पक्का, और यदि घर में होंगे तो यहां नहीं होंगे। एक समय में आप एक ही जगह पर रह सकते हैं, इसी को बोलते हैं देशकृत परिच्छेद। किसी देश में हमारा अस्तित्व होना और किसी देश में हमारा अस्तित्व नहीं होना, लेकिन ये देश परिच्छेद आत्म तत्व में नहीं है। सर्व देश में आत्म तत्व है, वो व्यापक है ना, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो व्यापक है, अनोरणियान महतो महियान, बड़े से बड़ी चीज को भी व्याप्त होके हैं और वो छोटी से छोटी चीज के अंदर भी है। इसीलिए वो देश परिच्छेद नहीं, ऐसा कौन सा देश जिसमें आत्म तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको पूछ लेता हूं, आप अक्सर एक बात बोलते हैं, भगवान कृष्ण द्वारका से आए बोलते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से आना पड़ेगा क्या? यदि भगवान को प्रकट होना है, भगवान कृष्ण की घोषणा है, मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, भगवान कहते कि ये सारी जो दुनिया है मेरे से व्याप्त है, मैं कनकन में हूं, कनकन में हूं, विश्वरूप दिखाया भगवान, मां को भी दिखा दिया, यशोदा मैया को भी दिखा दिया, एक बार नहीं कई बार दिखा दिया, अर्जुन को भी दिखा दिया। विश्वरूप का अर्थ कोई चमत्कार नहीं था, विश्व ही परमात्मा का रूप है, एक इकाई में सारा विश्व दिखा दिया। मां को बोला, मां ये सारी दुनिया जिसको तुम बोलते हो ना, अरे वो तो मैं ही हूं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, उसके अंदर मैं हूं, मेरे अंदर वो है, और वो चीजें एक हैं, कोई अलग नहीं है, विश्व ही मेरा रूप है। तो क्या उस परमात्मा को आपके सामने प्रकट होने के लिए वो द्वारका से यहां आना पड़ेगा क्या? वहां से कृष्ण को यहां आने की जरूरत नहीं है, केवल आपका संकल्प हो और वो जहां वहीं प्रकट हो सकते, केवल उनको प्रकट होना है कि आना है? भगवान को केवल आना है कि प्रकट होना है, उनको आने की जरूरत नहीं है, केवल उनको प्रकट होना है। जैसे दूध में, दही में मक्खन है, उस मक्खन को पैदा करना है कि केवल प्रकट करना है? आप जब उसको मथते हैं तो करते क्या है? उसको पैदा नहीं करते, आप उसको प्रकट करते हैं। ऐसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, तो भगवान को वहां से बुलाया कि वहीं से प्रकट किया? अरे वो सत्ता वहीं है, और कृष्ण को ही मालूम है कि मैं वहां भी हूं और यहां भी हूं, वहां से यहां आना पड़ेगा क्या उन्हें? एक बड़ा सुंदर मजेदार दृष्टांत है भगवान श्री राम का। एक बार मां कौशल्या भगवान विष्णु की आराधना कर रही है, और भगवान श्रीराम बहुत छोटे हैं, पालने में माने सुलाया, बहुत छोटे पालने में सुलाया, अभी तक तो वो बैठने इतने भी बड़े नहीं है। मां ने भगवान की पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाने लगे, और मां ने भगवान का आह्वान किया बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, गदगद होके आंख बंद कर आह्वान की मां, और जैसे आंखें खोली मां ने, तो मां आश्चर्यचकित रह गई और संदेह में पड़ गई, आशंकित हो उठी, क्योंकि प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर बैठकर वो लड्डू खा रहे थे। मां ने सोचा कि अब तो ये लड्डू जूठे हो गए हैं, अब भगवान को भूख कैसे लगेगा? मां आशंकित हो गई और वो सोचने लगी, अरे रे रे, तुमने खा लिया, ये जूठे हुए, अब मेरे को दूसरे बनवा के दूसरे लड्डू लाके भोग लगाना पड़ेगा। वो सोचने लगी मां, अचानक मां के मन में आया, नहीं नहीं, वो तो पालने में सो रहा है, और वो इतना छोटा है कि पालने से नीचे नहीं आ सकता है, यहां तक कैसे आएगा। मां को फिर आशंका हो गई कि वही है कि दूसरा है, ये हुआ क्या, मेरा दृष्टि का भ्रम तो नहीं। मां उठी और दौड़ते हुए गई और पालने में देखा वहां श्रीराम सो रहे थे। मां को लगा कि वहां देखी थी मैंने, वहां भोग वो लड्डू खा रहे थे बैठकर और यहां सो रहे हैं। मां को पुनः आशंका हुई, दौड़ती हुई मां पुनः वहां गई, वहां भी देखी लड्डू खा रहे हैं, वहां लड्डू खा रहे हैं, यहां सो रहे हैं। मां दिग्भ्रमित हो गई, आशंकित हो गई। और उसके बाद फिर प्रभु ने दिखाया कि मैया जो सो रहा है वही यहां लड्डू खा रहा है, और जो सोया हुआ है उसको यहां आने की जरूरत नहीं है, वो वहां से यहां नहीं आए बिना भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि जो पालने में वही यहां है और जो यहां है वो पालने में है, और दोनों के बीच में जो आपको अभाव दिख रहा है भगवान ने दिखा दिया कि मां उस अभाव के अंदर भी वो तत्व है। वहां तो केवल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम अभाव कहते हैं उसके अंदर भी वो तत्व है, और इसी को बोलते हैं वहां देशकृत परिच्छेद नहीं है, वो हर देश में है, हर देश में। अच्छा, भगवान अमेरिका में किसी भक्त के सामने प्रकट हो सकते कि नहीं? क्यों मधु बाबू, क्यों डॉक्टर, हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, और इतना दूर जाने के लिए फिर भगवान के लिए कोई वाहन की जरूरत पड़ेगी? मान लो कि कल चलकर हम मंगल पर पहुंच जाए, पहुंचेंगे मंगल पर, न भी पहुंचे तो हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचेंगे। ये आज जो प्रयत्न है वो ईश्वरीय प्रयत्न है, आज से लाखों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद ये पृथ्वी हमारे लिए रहने लायक नहीं रहेगी, और तब तक ईश्वर आयोजन कर चुका होगा, हमें दूसरे ग्रह पर भेजने का आयोजन कर चुका होगा। वो ये सारी जो खोजें हैं वो ईश्वर के संकल्प के अंदर है, बाहर नहीं है, और हम किसी दूसरे ग्रह पर जा चुके होंगे और वहां मंदिर भी बना चुके होंगे और वहां बैठ के सत्संग भी कर रहे होंगे पक्का। ये समस्ती दुनिया अनंत काल है, इसमें सारी ईश्वरीय रचना है, और उस समय यदि भगवान को प्रकट होना होगा तो क्या फिर इनको पृथ्वी से द्वारका पहुंचना होगा क्या? द्वारका से वहां मंगल अन्य ग्रहों पर पहुंचना होगा? नहीं, वो वहां पर भी वो तत्व है, आप उसको किसी भी एक देश में सीमित नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वेदांत की फिलोसफी है, वो हर देश में, हर देश में। वो नरक में होगा कि नहीं? स्वर्ग में तो है ही, आपको संदेह नहीं है, आपको बिल्कुल संदेह नहीं, वो स्वर्ग में जरूर है, लेकिन जिसको आप नरक बोलते उसमें होगा कि नहीं? हो, उसमें भी है। और यही कारण है वो देशाक्रांत नहीं है। देशाक्रांत माने किसी देश में है और किसी देश में नहीं, ऐसा नहीं। और तीसरी चीज, वो कालाक्रांत भी नहीं है, काल परिच्छेद, उसको काल परिच्छेद बोलते हैं। काल परिच्छेद माने किसी काल में होना और किसी काल में नहीं होना। जैसे अभी हम वर्तमान काल में हैं, सारी जन्य वस्तुएं एक काल में रहती हैं, केवल जो जन्य वस्तुएं हैं, जैसे अभी ये मकान है वर्तमान काल में, सुदूर भविष्य में हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और अतीत में भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, केवल वर्तमान में। ऐसे आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व हर काल में है, वो अतीत में भी, वर्तमान में भी, भविष्यत काल में भी। 90 नैयायिकों ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयो मता। काल की अवधारणा उन्होंने बहुत सुंदर दी, उन्होंने कहा कि ये काल, ये समय जन्यानाम जनक, दुनिया की हर वस्तु को पैदा करने वाला है, ये समय बड़ा बलवान, ऐसा बोलते ही नहीं आप, समय बड़ा बलवान, ये समय परिवर्तित कर देता है, आदमी को बदल देता है, आदमी को बना देता है, इसलिए जन्यानाम जनक, उन्होंने तो यहां तक बोला समय से वस्तु पैदा होती है, समय वस्तु को बदल देता है, पैदा करता है। ऋतु आए फल होए, ये समय है। माली कितना भी पानी डाले, कितना भी खाद डाले, लेकिन समय की अपेक्षा है। आप कितनी भी अच्छी दवा दे, वो दवा भी जो काम करते हैं वो समय के हिसाब से है। ऐसा नहीं होता कि आपने दवा खाई और जादू की तरह मलेरिया गायब, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर बोलते भैया ये 15 दिन दवा खा लीजिए, आप 10 दिन खा लीजिए, समय है। क्योंकि हर चीज के लिए, उसको बदलने के लिए समय की अपेक्षा है। हम समय के बिना बदलना चाहते हैं, हम बहुत शीघ्र तर बदलना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है, बहुत ज्यादा अच्छी दवा है तो वो कम दिन में बदल देगी, लेकिन दिन तो चाहिए, उसके लिए समय तो चाहिए, रिकवरी के लिए समय चाहिए।